आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। महाराष्ट्र बीजेपी कानून साज पार्टी अपना रहनुमा मुंतखब करने के लिए आज मुंबई में मीटिंग करेगी। इसरो आज दोपहर श्रीहरिकोटा से यूरोपीय खलाई एजेंसी के प्रोबा 3 सैयारचे खला में भेजेगी। आज भारतीय बहरिया के दिन की तकरीबात मुनक्द की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के शहर पुरी में मुनक्द की जा रही इन तकरीबात में शिरकत करेंगी। बरतानिया ने अपने शहरियों को बांग्लादेश में दहशतगर्दाना हमलों के बड़े खतरे से खबरदार किया है। बरतानिया के अराकीन पार्लियामेंट ने बांग्लादेश में हिंदू बिरादरी की नस्लकुशी पर तशवीश जाहिर की है। जुनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ नाफिज किए जाने के चंद घंटे बाद ही इसे खत्म कर दिया है। और मर्दों के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हरा दिया और अब फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के 9 मुंतखबा बीजेपी अराकीन असेंबली आज मुंबई में अपने लीडर का इंतखाब करने के लिए मीटिंग करेंगे। कानून साज पार्टी का रहनुमा चुनने में मदद करने के लिए बीजेपी ने मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपाणी को मुशाहिदीन के तौर पर मुकर्रर किया है। महाराष्ट्र के नए वजीर आला की हलफबरदारी की तकरीब कल शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगी, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। सीनियर बीजेपी रहनुमा और साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को वजीर आला के ओहदे के लिए सबसे मजबूत दावेदार समझा जा रहा है। बीजेपी की क्यादत वाले महायुति इतिहाद ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त जीत हासिल की है। भारत की खलाई तहकीक की तंजीम इसरो आज सपहर 4:08 पर PSLV C-59 प्रोबा 3 मिशन खला में भेजेगी। ये मिशन श्रीहरिकोटा में कायम सतीश धवन खलाई मरकज से भेजा जाएगा। प्रोबा 3 इसरो का न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड तिजारती मिशन है। PSLV C-59 यूरोप की खलाई एजेंसी के प्रोबा 3 सैयारचों को इंतहाई बैजवी मदार में पहुंचाएगा। इसके लिए उल्टी गिनती कल दोपहर 2:38 पर शुरू की गई थी, जो लगातार जारी है। तफसील हमारे नामानिगार से।
श्रीहरिकोटा में रॉकेट में रकीक ईंधन भरने का अमल जारी है और इसरो के साइंसदान लगातार रॉकेट के कलपुर्जों की जांच कर रहे हैं। प्रोबा 3 144 मीटर तवील सैयारचा है, जिसका वजन 3550 किलोग्राम है और इसमें 2 सैयारचे हैं। इन सैयारचों को एक साथ दागा जाएगा। इसमें से एक सैयारचे का वजन 310 किलोग्राम है और ये सूरज की बाहरी सतह की तहकीकात करेगा। इसके अलावा इसमें ओकल्टर सैयारचा है, जिसका वजन 240 किलोग्राम है, जो सूरज के इर्गिर्द साइंसी तजुर्बात करेगा। ये दोनों ही सैयारचे एक मिशन के तहत भेजे जा रहे हैं, जो खला में एक दूसरे के करीब रहकर गर्दिश करेंगे और कारकर्दगी अंजाम देंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज दोपहर ओडिशा के शहर पुरी में ब्लू फ्लैग बीच पर बहरिया के दिन की तकरीबात में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत करेंगी। तकरीबात में 15 बहरी जहाजों, आबदोजों और 40 से ज्यादा तैयारे करतब दिखाएंगे, जिसमें बहरी कमांडोज और भारतीय बहरिया का अमला भी हिस्सा लेगा। बहरिया की सलाहियतों और भारत के समंदर से मुतालिक मफादात की हिफाजत के लिए खुद को वक्फ कर देने को उजागर करने के मकसद से इस तकरीब में MiG-29K और हॉक जंगी तैयारे फिजाई करतब दिखाएंगे। मार्कोस की जानिब से जंगी मशकें, आबदोज की कारकर्दगी, जमीन और पानी पर उतरने और जंगी जहाजों से रॉकेट दागे जाने की मशकें पेश की जाएंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
भारतीय बहरिया का दिन हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिन 1971 की जंग के दौरान बहरिया की फैसलाकुन कार्रवाई ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है, जब भारतीय मिसाइल कश्तियों ने कराची बंदरगाह को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। इस साल इस तकरीब में पुरी के ब्लू फ्लैग साहिल पर मशक पेश की जाएगी। इस तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत करेंगी, जो भारतीय मुसल्ला फौजों की सुप्रीम कमांडर भी हैं। तकरीब में भारतीय फेरिया गजाकी की रोकथाम के मिशनों, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर की जाने वाली मदद और आलमी बहरी मशकों का मुजाहरा करेगी। तकरीब में 62 बहरी जहाजों और आबदोजों की कारकर्दगी भी पेश की जाएगी, जिन्हें मुल्की में तैयार किया गया है और जिनमें मसनूई जहानत, AI, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सदर मुर्मू कल से अपने वतन ओडिशा के 5 रोजा दौरे पर हैं। वो पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर जाएंगी और गोपा बंधु आयुर्वेद महाविद्यालय की 75 साल पूरे होने की तकरीबात में भी शिरकत करेंगी। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
कुवैत के वजीर खारजा अब्दुल्ला अली अल याहिया भारत के 2 रोजा दौरे पर कल रात नई दिल्ली पहुंच गए। वो आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने कहा है कि इस दौरे से भारत कुवैत कसीर जहती ताल्लुकात में और ज्यादा इस्तेहकाम पैदा होगा। बिलवास्ता टैक्सों और कस्टम्स के मरकजी बोर्ड CBIC ने मीडिया की इन खबरों को मुस्तरद कर दिया है जिनमें कहा गया था कि वजीरों के ग्रुप ने मुख्तलिफ अशिया और खिदमात पर आयद GST शरह में तब्दीली की सिफारिश की है। बोर्ड ने कहा है कि इस तरह की खबरें कबल अज वक्त और महज खयास आ रही हैं। CBIC ने कहा कि GST काउंसिल को वुजरा के ग्रुप की कोई सिफारिशात मौसूल नहीं हुई हैं और न ही GST की शरहों में तब्दीली के बारे में कोई बातचीत की गई है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने अराकी ने पार्लियामेंट से दरख्वास्त की है कि वो पार्लियामेंट हाउस के दरवाजों के सामने एहतजाज या मुजाहरे न करें। सेक्रेटेरिएट ने यह भी कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयों से ऐवान के इजलास के दौरान पार्लियामेंट के रास्ते में बड़ी रुकावट आती है। उसने इस सिलसिले में लोकसभा स्पीकर की जानिब से जारी हिदायत की तरफ भी तवज्जो मबजूल कराई है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने कहा है कि पार्लियामेंट के दरवाजों पर कोई रुकावट न हो, ये इसलिए भी लाजमी है कि पार्लियामेंट हाउस में अराकीन की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाया जाए। मरकजी हुकूमत से मंजूरी मिलने के बाद रतापानी को मध्य प्रदेश की शेरों की 8वीं पनागा करार दिया गया है। मध्य प्रदेश के वजीराला डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ा तोहफा है और अब रियासत वाकईतन शेरों की रियासत बन गई है। तफसील हमारे नामानिगार से।
मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि उन्होंने हमेशा मध्य प्रदेश की जंगलाती जिंदगी के तहफ्फुज और उसे फरोग देने को तरजीह दी है।
श्री प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हमारे प्रस्ताव को 8वां हमारा टाइगर अभयारण्य बना है और इसके बाद तुरंत बाद एक और बनने वाला है। एक तरह से ये देश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर हमारे यहाँ है तो टाइगर पार्क भी हमारे यहाँ है।
रातापानी की शेरों की पनाहगाह में 90 शेर और दूसरे जंगली जानवर रहते हैं। रातापानी को शेरों की पनाहगाह करार दिए जाने से इस इलाके में सियाहत की हौसला अफजाई होगी। इसके अलावा मरकजी और रियासती हुकूमत और शेरों के तहफ्फुज़ की कौमी अथॉरिटी की जानिब से बजट मुख्तस किए जाने से जंगलाती जिंदगी का बेहतर तरीके से बंदोबस्त किया जाएगा। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। माहौलियात और जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने बंजर होती हुई जमीन और मजबूरी में किए जाने वाले तर्क वतन पर इसके असरात से निमटने के लिए बैन अल-अक़वामी तआवुन की जरूरत पर जोर दिया है। वो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में COP16 के दौरान जमीन को बंजर बनाए जाने की रोकथाम से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा कन्वेंशन में तर्क वतन के बारे में वजारती मुज़ाकरात में इजहार ख्याल कर रहे थे। तफसील हमारे नामानिगार से।
तर्क वतन से मुतालिक वजारती मुजाकरात के दौरान जंगलात के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि तर्क वतन एक देरीना अमल है जो बेहतर मौकों की तलाश में किया जाता है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ गुजर बसर की तलाश में मजबूरी में किए जाने वाले तर्क वतन पर बात कर रहे हैं। जमीन की अबतर होती हुई हालत और खुशखाली की वजह से मिट्टी की जरखेजी में कमी आ जाती है और लोगों को गुजर बसर में दुश्वारी होने लगती है। जो जमीन बंजर हो गई है उसमें से 2030 तक 2,60,00,000 हेक्टेयर जमीन बहाल करने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 2019 के अहद का जिक्र करते हुए मरकजी वजीर ने जमीन की अबतर होती हुई हालत के मसले से निमटने के लिए भारत के जामे तरीक़ेकार पर जोर दिया। मुल्क ने बहुत से इख्तराई प्रोग्रामों पर अमल दरामद किया है जिसमें पानी के जखीरों को ताज़ा करने के लिए अमृत सरोवर इकदाम और किसानों को मिट्टी की जरखेजी से मुतालिक कार्ड तकसीम करना भी शामिल है। भारत की हिकमत अमली में तकनीकी और माली दोनों तरीक़ेकार शामिल हैं जिसके तहत ज़रई सरगर्मियों में मदद देने के लिए इलाकाई देही बैंकों के जरिए बहुत छोटे कर्ज भी दिए जा रहे हैं। मुल्क ने मिट्टी और पानी के बंदोबस्त के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज़ को भी अपनाया है जिसमें खलाई टेक्नोलॉजी, जोग्राफियाई जानकारी के निज़ाम और मसनूई जहानत AI भी शामिल है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
इस दौरान भारत ने उन तरक्की पजीर मुल्कों को टेक्नोलॉजी में की गई पेशरफ्त के बारे में बताए जाने की अहमियत पर जोर दिया जिन्हें जमीन की अबतर होती हुई हालत का मसला दरपेश है और जिनके लिए زمین پر زندگی اور امن و انصاف سے متعلق پائیدار ترقیاتی مقاصد حاصل کرنے کی غرض سے اس طرح کا اشتراک ضروری ہے۔ وزیر موصوف نے اپنے بیان میں زمین کی ابتر ہوتی ہوئی حالت اور مجبوری میں کیے جانے والے ترک وطن، خاص طور پر کمزور آبادیوں پر اس کے غیر متناسب اثرات کو اجاگر کیا۔ بھارت نے اپنے تجربات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی اشتراک اور فطرت پر مبنی طریقہ کار ان باہم مربوط چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے لازمی ہے۔ برطانیہ نے اپنے شہریوں کے لیے بنگلہ دیش کے سفر سے متعلق ایڈوائزری جاری کی ہے اور کہا ہے کہ دہشت گرد بنگلہ دیش میں حملوں کی کوشش کر سکتے ہیں۔ برطانیہ کے غیر ملکی دولت مشترکہ اور ڈیولپمنٹ آفس ایف سی ڈی او نے وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش میں غیر ملکی شہریوں کی بھیڑ بھاڑ والے علاقوں جیسے مذہبی مقامات اور سیاسی ریلیوں میں اندھا دھند دہشت گردانہ حملے ہو سکتے ہیں۔ ایڈوائزری میں مزید کہا گیا ہے کہ کچھ گروپوں نے ان لوگوں کو نشانہ بنایا ہے جن کے طرز زندگی کو وہ اسلام کے مخالف سمجھتے ہیں۔ ایڈوائزری کے مطابق ملک میں اقلیتی مذہبی برادریوں اور پولیس اور سیکورٹی فورسز پر بھی حملے ہوتے رہے ہیں، ان میں بڑے شہروں میں کیے گئے آئی ای ڈی حملے بھی شامل ہیں۔ بنگلہ دیش کی سیاسی صورتحال کے بارے میں برطانیہ نے جولائی اور اگست میں کہا تھا کہ پورے بنگلہ دیش میں تشدد پھیل گیا ہے، جس کے نتیجے میں کئی جانیں تلف ہوئی ہیں اور کئی لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ اس دوران برطانیہ کے اراکین پارلیمنٹ نے بنگلہ دیش میں ہندوؤں کی نسل کشی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ایوان زیری میں بنگلہ دیش کی تشویشناک صورتحال پر ارجنٹ ایشو پیش کیا گیا۔ کنزرویٹو پارٹی کی رکن پارلیمنٹ پریتی پٹیل نے بنگلہ دیش کی صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیا۔ ملک میں تشدد، توڑ پھوڑ اور ہندو اقلیتی برادری کو نشانہ بنانے جانے کے بڑھتے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے محترمہ پٹیل نے کہا کہ بنگلہ دیش کے کئی حصوں میں جاری تشدد بے قابو ہو گیا ہے۔ ایک دیگر رکن پارلیمنٹ باب بلیک مین نے کہا کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے گھر جلائے جا رہے ہیں اور ان کے کاروبار لوٹے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کی نسل کشی کی واضح کوشش ہے۔ وہیں لیبر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ بیری گارڈینر نے بنگلہ دیش کی صورتحال پر بحث کے لیے برطانوی پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس طلب کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سوک یول نے ایمرجنسی مارشل لا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان پورے سیاسی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے قانون ساز اراکین کی جانب سے ایک بڑے دھچکے کے بعد قومی اسمبلی میں مارشل لا ختم کرنے کے لیے ووٹ دیے جانے کے بعد کیا ہے۔ ان کی کابینہ نے اچانک مارشل لا نافذ کیے جانے کے اعلان کے تقریباً 6 گھنٹے بعد اسے ختم کرنے کی ایک تحریک کو منظوری دے دی۔ جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے تصدیق کی ہے کہ جن فوجیوں کو مارشل لا نافذ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس آ گئے ہیں اور معمول کے حالات بحال ہو گئے ہیں۔ ہاکی میں دفاعی چیمپئن بھارت آج شام عمان کے مسقط میں مردوں کے جونیئر ایشیا کپ ہاکی کے فائنل میں روایتی حریف پاکستان کا سامنا کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8:30 بجے شروع ہوگا۔ کل دوسرے سیمی فائنل میچ میں بھارت نے ملیشیا کو 3-1 سے شکست دی تھی۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں توحید حقانی۔
شکریہ ضمیر رضوی۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ، راشٹریہ سہارا اور ملاپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے نئے فوجداری قوانین کو قوم کے نام وقف کیے جانے کی خبر کو شہ سرخی بناتے ہوئے لکھا ہے، ملک کو انگریزی قوانین سے ملی آزادی، 3 نئے قوانین سزا کے لیے نہیں انصاف کے لیے بنائے گئے ہیں۔ روزنامہ پرتاب، ہندوستان ایکسپریس اور ملاپ سمیت دیگر کئی اخباروں نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے پارلیمنٹ میں دیے گئے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ بھارت اور چین کے تعلقات بہتری کی طرف گامزن، ایل اے سی پر امن برقرار۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی جانب سے معذور افراد کے بین الاقوامی دن کے موقع پر نیشنل ڈیزیبلٹی امپاورمنٹ ایوارڈ 2024 پیش کیے جانے کی خبر کو روزنامہ پرتاب نے پہلے صفحے پر شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان ایکسپریس نے اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل تیسرے دن تیزی اور مثبت رجحان کی خبر کو اپنے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔
اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ مہاراشٹر بی جے پی قانون ساز پارٹی اپنا رہنما منتخب کرنے کے لیے آج ممبئی میں میٹنگ کرے گی۔ اسرو آج دوپہر سری ہری کوٹا سے یورپی خلائی ایجنسی کے پروبا 3 سیارچے خلا میں بھیجے گی۔ آج بھارتی بحریہ کے دن کی تقریبات منائی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اوڈیشہ کے شہر پوری میں منعقد کی جا رہی ان تقریبات میں شرکت کریں گی۔ برطانیہ نے اپنے شہریوں کو بنگلہ دیش میں دہشت گردانہ حملوں کے بڑے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ برطانیہ کے اراکین پارلیمنٹ نے بنگلہ دیش میں ہندو برادری کی نسل کشی پر تشویش ظاہر کی ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر نے مارشل لا نافذ کیے جانے کے چند گھنٹے بعد ہی اسے ختم کر دیا ہے۔ और मर्दों के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।